जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम यशोदनंदन जय गज जन रंजन जय यशोदनंदन जय गज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा।
प्रणाम करें।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणदाई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। आप लोग और सब आगे आ जाएं। आप लोग जो दूर बैठे हैं सब लोग कृपा करके आगे आ जाइए। वैसे रोज भगवत गीता पर कक्षा होती है लेकिन आज हम कुछ और ही कथा सुनेंगे क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। कार्तिक महीने के बाद अगला जो महीना है वो चल रहा है। जानते कौन सा महीना है अगला? है अग्रहायण। अग्रहायण का महीना है ना, बहुत पवित्र महीना है। भगवान कृष्ण कहते हैं मासानाम मार्ग शीर्ष हम, महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना। हाँ तो ये कृष्ण का ही महीना है, मार्ग शीर्ष का महीना बहुत पवित्र है। और इस महीने में और भी कुछ विशेष घटना हुई। ब्रज की कन्याओं ने कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए पूरे महीने क्या किया था, कात्यायनी व्रत किया था ना, कात्यायनी का व्रत किया था। तो ये जो कथा है ये अनेक ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। तो आज हम सुनेंगे गर्ग संहिता से इस कथा को। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बहुत ही पवित्र कथा है। इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि अलग अलग यूथ हैं, गोपियों के यूथ अलग अलग हैं। भगवान के जो है कितने अवतार हुए, भगवान के अनेक अवतार हुए और प्रत्येक अवतार में कुछ स्त्रियां भगवान से आकर्षित होती हैं कि भगवान को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो सभी अवतारों में जो अलग अलग स्त्रियां भगवान से मोहित थीं उन सब की इच्छा पूर्ण हुई कृष्ण अवतार में, है ना। तो अलग अलग प्रकार की जो स्त्रियां हैं तो उनके जो है अलग अलग यूथ हुए, है ना। जैसे भगवान राम के अवतार में जब भगवान जो है मिथिला में आए उनका सीता जी से विवाह हुआ। तो मिथिलापुर की जो स्त्रियां थीं वो भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी, सीता के समान जो है वे भी भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती थी, है ना। लेकिन राम एक पत्नी प्रति हैं, तो एक से अधिक पत्नी वे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो भी उन स्त्रियों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो उन्होंने वर दिया कि तुम जो है ब्रज में गोपियां बनोगी, जब मैं आगे कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो तुम लोग ब्रज की गोपियां बनोगी। तो मिथिलापुर वासिनी हैं, गोपियां अलग हैं, इस प्रकार के 100 युवतें अलग अलग, कौशलपुर वासिनी गोपियां, मिथिलापुर वासिनी गोपियां, अयोध्या वासिनी गोपियां, पुलिंद कन्या गोपियां, सुतल लोक वासिनी गोपियां, है ना, जलंधरपुर वासिनी गोपियां, इस प्रकार की बहुत सी अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। और ये कथा नारद जी सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, राजा बहुलाशु को, जो मिथिला के राजा हैं, मिथिला के राजा बहुलाशु, है ना। तो भगवान कृष्ण के समय में मिथिला के राजा थे बहुलाशु, है ना, और भगवान राम के समय में मिथिला के राजा थे शिरध्वज, जो सीता के पिता थे। जनक तो सभी के लाते हैं, जनक तो सभी के लाते हैं, लेकिन सीता के जो पिता थे शिरध्वज नाम के जनक, उन्हीं की वंश परंपरा में जो राजा बहुलाशु हुए, तो कृष्ण के अवतार काल में राजा बहुलाशु, तो वही राजा बहुलाशु सुन रहे हैं, ये सब कथाएं सुन रहे हैं और नारद जी सुना रहे हैं ये कथाएं, है ना। तो जिस समय उनके वंश में बहुत पहले राजा शिरध्वज थे मिथिला के राजा, उस समय भगवान राम है मिथिला में आए और सीता से विवाह किया था। उस समय की जो स्त्रियां भगवान से मोहित हुई थीं, तो वे इस अवतार में गोपियां बने हैं। तो वे जो है कैसे भगवान को अपना पति बनाती हैं, नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। ये दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला है। सोचिए इस कथा को सुनने से कितना फल मिलेगा, दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल मिलेगा। कौन जाएगा वहाँ स्नान करने के लिए, बैठे बैठे फल मिलेगा अगर सुनोगे तो। सुनो, सुनने में कुछ नुकसान नहीं है, फायदा कितना है आप सोच नहीं सकते कितना फायदा है। दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम सुनो मैथिल, दशाश्वमेध तीर्थ से फलदम भक्ति वर्धनम। श्री राम के वरदान से जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वो मैथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री राम से वरान जाताम नव नंद गृह सुयाम कमनीयम नंद सोनुम दृष्ट्वा ताम मोह मास्थिता। तो ये मिथिला की जो स्त्रियां हैं भगवान राम के वरदान से अब जो गोपियां बनी हैं वो किनके घर में पैदा हुई हैं, 9 नंदों के घर में। कितने नंद हैं, 9 नंद हैं। कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता कौन है, नंदराज, नंदराज एक ही हैं, है, लेकिन नंद कितने हैं, 9, है ना। तो कृष्ण के पिता नंदराज हैं, नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गवें हों, और नंद उसे कहते हैं जिसके पास 9 लाख गवें हों। तो ब्रज में 9 नंद थे, यानी 9 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 9 लाख गवें थी। तो इस प्रकार से 9 नंदों के घर में ये पैदा हुए, है ना। तो कृष्ण नंदराज के पुत्र हैं और 9 नंदों की जो कन्याएं हैं ये मिथिला की स्त्रियां हैं जो 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई है। और जो है पिछले जन्म का जो प्रेम था तो वही जो है उनका प्रकट हो गया, कृष्ण का दर्शन करके प्रकट हो गया, उन पर मोहित हो गई। उन्होंने मार्ग शीर्ष के शुभ महीने में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडश उपचार से उसकी पूजा करने लगी। मार्ग शीर्ष से शुभे मासी चक्रो कात्यायनी व्रतम उपचार षोडश भी कृत्वा देवी मही मही। अब ये जो है कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर भौतिक कामना नहीं है। कृष्ण को पति बनाने की जो इच्छा है ये भौतिक इच्छा नहीं है, ये शुद्ध है ना, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, इनके अंदर शुद्ध इच्छा है ना। तो वैसे कात्यायनी की कोई पूजा करे, दुर्गा की पूजा करे, नवरात्र करे, है ना, तो वो जो है प्रशंसा की बात नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर भौतिक इच्छाएँ होती हैं। कोई पत्नी चाहता है या कोई पति चाहती है या कोई घर चाहते हैं, हाँ इंद्रिय तृप्ति भोग चाहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो दुर्गा की पूजा कात्यायनी की पूजा है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती है, लेकिन इनकी प्रशंसा होती है, क्योंकि दुर्गा की या कात्यायनी की पूजा करते हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण को पति प्राप्त करने के, प्रति रूप में प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसलिए इनका जो है बहुत गुण माना जाता है, ब्रज की कन्याओं का बहुत बड़ा गुण है कि कृष्ण को जो है पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा करती हैं। उन पूजा जो कर रहे हैं कात्यायनी की, लेकिन दिमाग में क्या है, कृष्ण भावना भावित होकर के ये पूजा करती हैं, है ना। तो उनका जो संबंध है वो देवी से नहीं है, देवी से अपना कोई संबंध नहीं है उनका, बल्कि वो कृष्ण से संबंध बनाना चाहती हैं, इसलिए देवी की पूजा करती हैं, है ना। तो अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी, है ना। तो देवी का कीर्तन नहीं करती हैं, देवी की पूजा करते हैं लेकिन देवी का कीर्तन नहीं करते हैं। किसका कीर्तन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, है ना। जिससे क्या पता चलता है, है ना, कि हम कृष्ण का, विष्णु का, राम का ये कीर्तन करते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कीर्तन गुणगान किसका करना है, कृष्ण का, राम का, विष्णु का, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है देवी का कीर्तन नहीं है। देवी की पूजा भी कर रहे हैं तो भी कृष्ण के को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो केंद्र में कौन है, कृष्ण है, कृष्ण है केंद्र में, है ना। तो आजकल तो सब जो है चलता है ना, देवी का कीर्तन, देवी जागरण, है ना। तो ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है कृष्ण का जो है वो कीर्तन करती हुई जमुना जी के जल में स्नान करती हैं। अरुणोदय वेलायां स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता आजगमुर गायन्त्यो भगवन गुणान। एक दिन में ब्रजांगनाए अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीझकर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। एकदाता स्वस्त्राणी तीरे न्यस्य ब्रजांगनाम विजहरुर यमुना तो ये कराभ्याम सिंचतीर मिथाम। प्रातः काल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। तासाम बासांसि सन्निये भगवान प्रातरागतः त्वरं कदम्ब मारुये चोरवन मौनमास्थितः। अब भगवान ने जो है उनके वस्त्रों को चुराया, है ना। तो इसको जो है हमें क्या समझना चाहिए, भगवान ने चुराया उनके वस्त्रों को, तो इसमें भगवान के अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है ये जो भौतिक भोग करने की, भगवान के अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, है ना, भगवान उनके वस्त्र चुराए, है ना। तो हे राजन अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगी। तानवीक्ष स्वभासांसी विस्मिता गोप कन्याकाम निपस्थितम विलोक्यात है सलज्जा जह सुर नप। तो देखो जिस कार्य के लिए उन्होंने व्रत किया था, एक महीने तक व्रत किया था, तो वो ही जो है हाँ, पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र चुराए। उन्होंने जो है जिस संकल्प से, बातें नहीं कि आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, हरी बोल, आपस में बातें मत करिए, यहाँ बैठ करके आपस में बातें करना ये बड़ी निंदा की बात है। और ये बच्चा भी जो है दौड़ रहा है, इसको भी मारिए, बिल्कुल शांत, बच्चे को भी शांत करिए। तो मैं क्या बता रहा था कि भगवान ने उनके वस्त्र चुराए, और वो जो है जब देखा उन्होंने कि वस्त्र नहीं है, और जब कदम्ब पर चढ़े हैं, बैठे हैं श्याम सुंदर, तो उनको देख करके लजा गई और हंसने लगी। तो ये जो सुख है, ये है सुख वास्तव में जो भगवान उनको दिया। ये सुख जो है इंद्रियों का सुख नहीं है, ये सुख जो है ये शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होने वाला सुख है, जो कि माधुर्य रस उसको जिसको बोलते हैं, है ना। तो भगवान वस्त्र चुरा करके कदम के ऊपर बैठ गए, और भगवान को देख करके वो हंस रही हैं, लजा रही हैं, है ना। तो ये जो भाव है, ये माधुर्य भाव का जो है सुख है जो उनको प्राप्त हो रहा है। और इसमें उनका शरीर जो है पानी में है, और ठंड में जो है कष्ट पा रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है, तो उससे उनको कष्ट नहीं हो रहा है, ठंड का भी कष्ट नहीं हो रहा है, इतना सुख, क्योंकि शरीर से ऊपर सुख है ना, कि शरीर से ऊपर की स्थिति है उनकी, है कि शरीर की चेतना में नहीं है, वो कृष्ण चेतना में है। जैसे कृष्ण वस्त्रों को जब देखा कि कृष्ण ने चुरा लिए हैं और कदम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो देख करके कि ये हमारे पति हैं, पति को ही ऐसा अधिकार हो सकता है, तो पति के अलावा और जो है मतलब किसी को अधिकार नहीं है कि पत्नी के वस्त्रों को छुए। तो भगवान ने जो है उनको ये सम्मान दिया कि उनको अपनी पत्नी बनने का सम्मान दिया, भगवान ने वस्त्र चुराए। तो भगवान को देख करके हंस रही हैं, लजा रही हैं। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन कन्याओं से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रदेशन्तो सुभासांसी सर्वागत चात्र अन्यथा नहीं दास्यामी वृक्षात कृष्ण उवाच। हे राजन, तभी गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुँह नीचे करके बोली, राजन राजन्त्यस्ता शीत जले हसंत्या प्राहुरानता। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर। देखो कैसे नाम, कैसे नामों से पुकारते हैं भगवान को। पहला है हे मनोहर नंद नंदन, है क्योंकि भगवान उनको सुख देने के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा कार्य नहीं है कि पुरुष स्त्री का शोषण करे, स्त्री पुरुष का शोषण करे, ये प्रेम का संबंध है भगवान का। तो वे जो है प्रेम से भरी हुई भगवान से बोल रहे हैं, क्या बोल रही हैं, हे मनोहर नंद नंदन और हे गोप रत्न, गोप रत्न गोपों में रत्न है आप, और हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हंस के समान है आप, इस गोपाल वंश के जो है हंस के समान है आप। हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर पीड़ा को हर लेने वाले हैं, पीड़ा थोड़ी देने वाले हैं। तो भगवान ने कन्याओं को पीड़ा देने के लिए नहीं वस्त्र हरण किए, पीड़ा को हरने के लिए वस्त्र हरण किए। तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगे, तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नव हंस महातिहारिन श्री श्याम सुंदर तबोधित मध्य वाक्यम कुरमः कथम विवसना किलते पिदास्यः। उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया, इन वृषि कन्याओं ने बहुत अच्छा तर्क दिया। क्या तर्क दिया, कि आप कि हम दासियां हैं, आप हम समर्पित हैं, तो फिर ये आपके ही लिए लज्जा की बात है कि हम बिना वस्त्र के हैं, हमें वस्त्र ना मिले। जब आप पूरी दुनिया को भोजन वस्त्र देने वाले, पूरी दुनिया का पालन करने वाले, और हम आपकी दासियां,
और हम हमें वस्त्र ना प्राप्त हों, ये कितनी लज्जा की बात है। उन्होंने कितना सतर्क दिया कि जब हम आपकी समर्पिता हैं, हमने आपको पति रूप में प्राप्त किया है, तो फिर हमें वस्त्र ना मिलें, ये जो है मतलब कितना एक तरह से अन्याय या कितनी लज्जा की बात है, वो कह रहे हैं, है ना। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं, ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं, भय तो आपको छू भी नहीं सका है, हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की हुई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगे। गोपांगना गोपांगना वसन मुन नवनी तिहारी जातो ब्रजे तिरसिका किल निर्भयोसी वासांस देहि नहि चेन मथुराधिपाय पक्ष्यामहे नयमति वैकुतम त्वयात्रय। तो क्या कह रही हैं कि आप ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं, ब्रजे अति रसिका, ब्रज में जन्म लेकर के भी बड़े रसिक हैं, हैं? तो आप ब्रज के नागर हैं, ब्रज में जो है जितने निवासी हैं वे सब क्या हैं, गांव के निवासी हैं, गांव के निवासी जो है गंवार होते हैं, गांव के निवासी गंवार होते हैं, अशिक्षित होते हैं, है ना, और वे रस लेना नहीं जानते, है ना, वे तो काम करना जानते हैं, परिश्रम करना जानते हैं, है ना, लेकिन ब्रज में होकर के आप बहुत रसिक हैं, आप नागर हैं, आप चतुर हैं, है? तो आप आनंद लेते हैं ब्रज में, है ना, तो आपके अंदर ऐसे गुण हैं जो ब्रज में किसी के अंदर नहीं है, है ना, तो आप जो है हर चीज़ का आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, तो आपके अंदर ये गुण है, ब्रज में और कोई ऐसा नहीं है आपके जैसा, आप जो है ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं, है? ब्रजे अति रसिका और किल निर्भयोसी, आपको भय छू भी नहीं सका, आप बिल्कुल निर्भय हैं, आपको किसी बात का भी भय नहीं है, है ना, कितने भय आए, कितने संकट आए, है ना, आपने सब दूर किए, सबके भय दूर किए, है ना, तो आपको कहाँ भय, आपको कोई भय नहीं है, है ना, आपको भय नहीं है, फिर हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, मासांस दे ही नहीं चेन मथुरा दे पाए, हमें वस्त्र दीजिए, नहीं तो मथुरा के राजा से हम आपके द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा अन्याय बताएंगे, हम मथुरा के राजा से बताएंगे बहुत बड़ा अन्याय। ये बात जो है जो ब्रज कन्याएं बोल रही हैं, ये कुछ ऐसे नहीं बोल रही हैं कि मतलब ऐसा करेंगी, वो वस्त्र प्राप्त करने की कुछ भी मतलब बोल रही हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रही हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, हैं, तो वस्त्र पाने के लिए वो कुछ भी मतलब बोल रही हैं, बोलना चाहती हैं, तो कह रहे हैं कि आपका ये बहुत बड़ा अन्याय है, कह रही हैं, लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं, हैं, कि मेरी तरफ से कोई अन्याय नहीं है, मैं तो न्याय कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्या न्याय कर रहा हूँ, तुम्हारे व्रत का पुरस्कार दे रहा हूँ, अन्याय नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, तुमने जिस कार्य के लिए व्रत किया है उसका मैं पुरस्कार दे रहा हूँ, है ना, कि तुम जिस संकल्प के साथ तुमने व्रत किया है, हैं, तो भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास से शोभित होने वाली हे गोपांगनाओ, ये तुम मेरी दासियां हो, तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा, इन सब वस्त्रों को अपने घर ले जाऊंगा, भगवान ने कहा तुम जो है दृष्टि नीचे आओ और वस्त्र ले लो, अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री भगवान आवाज, दास्यो ममैव यदि सुंदर मंदहासाम इच्छन्तु दे इच्छन्तु वेति किल चात्र कदम्ब मूले नोचेत समस्त वसनानि नयामि गेहां तस्मात् करिष्यते ममैव वचो विलम्बान। तो भगवान ने फिर क्या कहा कि जब तुमने कहा कि हम तुम्हारी दासियां हैं, हम तुम्हारी दासियां हैं, उन्होंने ये तर्क दिया था कि हम तुम्हारी दासियां होकर के वस्त्र रहित हैं, ये कितनी लज्जा की बात है, आपके ही लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि हम आपकी दासियां हैं और हम वस्त्र रहित हैं, है ना। तो भगवान क्या बोले कि तुम मेरी दासियां हो तो मेरे आदेश अनुसार कार्य करो, है ना। कितना भगवान का तर्क कितना शक्तिशाली है कि अगर तुम मेरी दासियां हो हा? तो मेरे कथन के अनुसार कार्य करो। और वस्त्र हा? वस्त्र क्यों, वस्त्रों के बिना तुम नहीं रहोगी, तो वस्त्र मैं दूंगा, है ना। तो मेरे हाथ से वस्त्र लो, है ना। तो भगवान के हाथ से वस्त्र लेना कितने सम्मान की बात है, है ना, कि भगवान अपने हाथ से वस्त्र देंगे, है ना। तो भगवान ने कहा वस्त्र लो, तुम वस्त्रों के बिना नहीं रहोगी, लेकिन मेरे आदेश का पालन करो, भगवान कह रहे हैं, है ना। दास्यो ममेव यदि सुंदर मंद हासा, हाँ तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर है और मंद मुस्कान है, इच्छन तो वैद्य के चात्र कदम्ब मोरे, इस कदम्ब के नीचे आओ, नोचे समस्त वस्त्राने नया में गया, अन्यथा मैं सब वस्त्र अपने घर ले जाऊंगा, भगवान के सब वस्त्र मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो भगवान का भी एक कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि वस्त्र घर ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे क्या करेंगे भगवान उन वस्त्रों को। जैसे उन्होंने कहा कि हम शिकायत करेंगे मथुरा के राजा से, कंस से शिकायत करेंगे, तो वो भी उनका कोई इरादा नहीं था कि कंस से शिकायत करें, वस्त्र कहते भगवान का भी कोई इरादा नहीं है कि वस्त्रों को अपने घर ले जाएं, लेकिन जैसे वो कह रही हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन करना तो नहीं है, ऐसे भगवान कह रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे, करना तो नहीं है, है ना, ठीक है, नहीं तो मैं वस्त्र अपने घर ले जाऊँगा। तस्मात करिष्यति ममैव वचो विलम्बात, इसलिए मेरे वचन का पालन बिना विलंब के करो, अविलंब मेरे वचन का पालन करो। नारद जी कहते हैं हे राजन, तब वे सब ब्रज कन्याएं जाले से कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथ से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने शरीर में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रही। तदाता निर्गता सर्वा जलान गोप्योति वेपिता आनता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्याम शीतकर्षिता कृष्णदत्ता निवासांसि ददु सर्वा ब्रजांगनां मोहिताश्चाश्रितास्तत्र कृष्ण लज्जायते क्षणां। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले, ता ज्ञात्वा तासाम अभिप्रायम परम प्रेम लक्षणम आह मंदस्मिता कृष्णा समंतान इच्छता वचः। तो भगवान ने उनका अभिप्राय जान करके क्या है, परम प्रेम लक्षण, परम प्रेम का लक्षण जान करके, है ना। तो ये जो वृषि कन्याएं हैं इनके अंदर परम प्रेम का लक्षण है, है ना, वो नहीं लक्षण है कि वो भोगना चाहती हैं भगवान को, वो सेवा करना चाहते हैं, सेवा की भावना है भगवान की, है ना। तो ऐसा इस संसार में स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता, ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध इस संसार में नहीं देखा जाता, है ना। पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री पुरुष को भोगना चाहती है, लेकिन ये जो है इन कन्याओं का जो कृष्ण के साथ संबंध है वो शुद्ध प्रेम का है, परम प्रेम का संबंध है, और वो भगवान जानते हैं, इसको भगवान पहचानते हैं कि भगवान तो प्रेम के भोक्ता हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम तपस्या के भोक्ता हैं, भगवान जो है उसको भोगते हैं, भगवान जो है इंद्रियों के भोक्ता नहीं है, इंद्रियों को नहीं भोगते हैं ना, ये भौतिक संसार को नहीं भोगते भगवान, भौतिक शरीर को नहीं भोगते भगवान, भगवान भोगते हैं तपस्या को, भोगते हैं यज्ञ को, भोगते हैं, है ना, उनका जो शुद्ध प्रेम भाव है ना उसको भगवान भोगते हैं, है ना। तो भगवान ने जब जाना उनका परम प्रेम लक्षण, उनका अभिप्राय जो है उसमें परम प्रेम का लक्षण है, आय मंद स्मिता कृष्णा, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए कृष्ण ने उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, हे गोपांगनाओ तुमने मार्ग शीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वो अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। भवति फिर मार्ग शेर से कृतम कात्यायनी व्रतम मदर्थम तच्च सफलम भविष्यति न संशयः। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। परसो हने चाटव्याम कृष्णा तीरे मनोहरे युष्माभिश्चा करिष्यामी रासम पूर्ण मनोरथम। यो कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण हो मंद हास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएं अपने घरों को चली गई। इत्युक्त अथ गते कृष्णे परिपूर्ण तमे हरौ प्राप्तानंद मंद हासा गोप्या सर्वागृहान ययो। तो इस तरह से हमने ये बहुत पवित्र कथा जो गणेश संहिता में मिलती है वस्त्र हरण की लीला सुनी। और ये जो समय है ये गीता जयंती का भी चल रहा है, गीता मैराथन का चल रहा है, तो गीता के किसी एक अध्याय का हम महात्म सुनेंगे, इसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले अध्याय का महात्म सुनिए, गीता के प्रत्येक अध्याय का के महात्म की एक एक अलग कथा है ना पद्म पुराण में। तो पहले अध्याय की कथा है ना, तो सुनिए। पार्वती जी जो है शिव जी से पूछती हैं, सुने सब लोग ध्यान से, पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे देव, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। शिव जी ने विष्णु से संबंधित बहुत से धर्म पार्वती को सुनाए जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ। पार्वती कह रही है, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है, हरि भक्ति में बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, जिनका श्री विग्रह यानी शरीर अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपने महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। वह समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। पार्वती जी ने शिव जी से क्या कहा कि मुझे गीता का महात्म्य सुनना है ना। तो शिव जी जो है बता रहे हैं गीता के महात्म्य कहाँ से शुरू किया कि लक्ष्मी जी शेष नाग के सैया पर भगवान विष्णु से प्रश्न करती हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो शेष सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप अपने ऐश्वर्य को भोगते नहीं, आपके पास तो इतना ऐश्वर्य है, और आप क्या कर रहे हो? नींद ले रहे हो, है ना? आप नींद लेते रहते हो, तो नींद में क्या सुख है, है ना? अनेक प्रकार के भोग, आपके कितने ऐश्वर्य हैं, अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की बजाय आप नींद लेते हो, है ना? तो निद्रा का सुख जो है कोई अच्छा सुख थोड़ी माना जाता है, है? और आपके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तब नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ। भगवान ने क्या कहा, हे सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ, है ना? देवी, ये वही तेज है जिसका योग्य पुरुष अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। तथा जिसे विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वो तेज एक है, अजर प्रकाश स्वरूप है, आत्मरूप रोग शोक से रहित है, अखंड आनंद का पुंज है, इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वर, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। आपका ध्यान तो सब योगी करते हैं, आपके स्वरूप का ध्यान तो योगी करते हैं, पर आप भी किसी तत्व का ध्यान करते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आपके अलावा भी कुछ ध्यान करने योग्य वस्तु है क्या? इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है वो तत्व, एकमात्र सुंदर है वही मेरा ईश्वरी रूप है। यही रूप है मेरा, भगवान करें यही ईश्वरी रूप है, एकमात्र सुंदर है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है, मेरे इसी रूप का प्रतिपादन क्यों हुआ है? अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका करते हुए कहा, लक्ष्मी जी की देवी को शंका हुई, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। गीता भी जो है मेरा शरीर है, भगवान कह रहे हैं 18 अध्याय, 18 अध्याय मेरा शरीर है। कैसे? शुरू के 5 अध्याय मेरे क्या हैं? 5 मुख हैं, और 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। 10 अध्याय आगे वाले, 6वें से लेकर के 15 तक, 6वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक 10 अध्याय हुए, ये मेरी 10 भुजाएं। और 1 अध्याय को उधर, 1 अध्याय उसके बाद 16वां अध्याय उधर है मेरा, और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। 2 अध्याय मेरे 2 चरण हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर 5 सिर है ना, 5 मुख हैं पहले है ना, और फिर मुख के नीचे भुजाएं 10 भुजाएं है ना, और फिर 1 उधर 2 पैर, 18 हो गए, 5 और 10, 1 और 2, 18 हो गए ना, 18 अध्याय। इस प्रकार 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझना चाहिए। सुनो सुश्रोणे वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्तानि पञ्चजानि हि 5 अध्यायान् अनुक्रमान् 10 अध्यायान् भुजाश्चैकम् उदरं द्वयपदां भुजे एवं 18 अध्यायी। वांगमयी मूर्तिरीश्वरी, ये ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। उत्तम, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का वह शिरोमणि था, उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था, हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है लेकिन क्या करता था, हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, मदिरा पीने का व्यसन था, और वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। पत्ते तोड़ करके बेचेगा और पैसा कमाएगा, तो पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वो अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग करके मर्त्य लोक में लौट आया। नरक में अनेक यातनाएं भोगी, इसके बाद मर्त्य लोक में आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल बना। नरक से भी जब वो आया तो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त हुआ, बोझ ढोने वाला बैल बना। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। पंगु लंगड़ा, लंगड़े व्यक्ति ने अपने जीवन को आराम से बिताने के लिए इसको बैल को खरीद लिया। लंगड़ा चल नहीं पाता है तो इसके ऊपर बैठ करके चलेगा, है ना। जैसे आजकल जो है लंगड़े लोग हैं तो हाथ की पहिए वाली हाथ की गाड़ी ले लेते हैं, उसमें चलते हैं। तो समय तो ये हाथ की गाड़ी नहीं चलती थी, तो बैल खरीद लिया, इसके ऊपर बैठ करके चलूँगा। बैल ने अपने पीठ पर पंगू का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगू ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, इससे वो थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा। देखो बैल की होने में कितना कष्ट है, और वो लगड़ा जो है पता नहीं क्यों घुमा रहा, ऊपर ऊपर ऊंचे स्थान में घुमा रहा है, तो थक करके बेचारा गिर गया। गिरा बड़ी तेजी से नीचे गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। अब बैल गिर गया नीचे, अब निकालने के लिए कोई क्रेन भी नहीं थी। आजकल क्रेन से निकाल लेते ना, अब गड्ढे से कौन निकालेगा बैल को। तो बहुत लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया, हाँ? कि सुखपूर्वक शरीर छूट जाए इसका, इसके लिए अपना पुण्य दे रहे हैं सब लोग, है ना। इस तरह की विधि होती थी। ये थोड़ी है कि भाई अब वो जो है गड्ढे में गिर गया है तो उसको मार दो। आजकल लोग यही सोचते हैं, हाँ? अगर बैल जो है मान लो गड्ढे में गिर गया है, अब निकल नहीं सकता है, तो क्या करो, मार डालो, बेचारा कष्ट पा रहा है, कष्ट छूट जाएगा, तो हत्या करते हैं, है ना। जैसे गांधी जी से भी किसी ने पूछा, कोई बछड़ा जो है, हाँ, रोग से कष्ट पा रहा था, तो गांधी जी ने आज्ञा दे दी कि हत्या कर दो बछड़े की, है ना। मतलब जितनी अपनी बुद्धि थी, अपनी बुद्धि से सोचा कि हत्या कर दो, बेचारे कष्ट से छूट जाए। लेकिन विधि नहीं है, ये विधि नहीं है। विधि क्या है कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, इसके प्राण छूट जाए सुखपूर्वक। प्रार्थना, अपने पुण्य दे रहे हैं लोग, तो विधि ये होती है। ये विधि नहीं होती कोई कष्ट पा रहा है तो गोली मार दो, हत्या कर दो, या सिर काट दो, चाकू मार दो, हत्या कर दो, ये विधि नहीं होती है। तो तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। सबने अपना अपना पुण्य याद किया, भाई मैंने प्रयाग में जाके स्नान किया था, वो पुण्य मैं इसको दे रहा हूँ, इस बैल को, तो ये अपने सुखपूर्वक प्राण छोड़ दें। तो सबने अपना अपना पुण्य याद किया कि मैंने ये पुण्य किया था, मैंने वो पुण्य किए थे, मैं वो दे रहा हूँ, मैं अपना वो पुण्य दे रहा हूँ, मैं अपना वो पुण्य दे रहा हूँ। सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे हैं उस बैल को। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। वेश्या तो वेश्या के क्या पुण्य, उसे तो पाप ही पाप है। वेश्या खड़ी थी, उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए त्याग किया, अगर मेरा कोई पुण्य हो तो। वेश्या का क्या पुण्य, उसके तो पाप ही पाप है। अगर मेरा कोई पुण्य हो तो मैं दे रही हूँ इस बैल के लिए। तब यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। बैल हाँ, यमपुरी में ले गए, वहां ये विचार करके वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो पृथ्वी में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। वेश्या के पुण्य से प्राण भी छूट गए सुख पूर्वक, और ब्राह्मण के कुल में उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। वेश्य के पुण्य से पिछले जन्म की बात का भी स्मरण रहा। क्या कि मैं बैल था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया। उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। उस वेश्या से पूछता है कि तुमने कौन सा पुण्य दिया था मुझे। तुम्हारे पुण्य से मैं बैल के शरीर से सुखपूर्वक प्राण छोड़ करके और उत्तम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो वो कौन सा पुण्य था आपका, वो सुशर्मा पूछता है। वेश्य ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे दान किया था। वेश्या बोले, अब वो मैं नहीं जानता क्या पढ़ता है, लेकिन तोता पिंजरे में कुछ पाठ करता है, उसको सुनने से मेरा हृदय पवित्र हो गया है, तो मैंने वो पुण्य दान किया था तुमको ना, लेकिन पता नहीं है क्या पढ़ता है, सोचिए। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, उन दोनों से कौन दोनों, सुशर्मा और उस वेश्या ने तोते से पूछा। तब उस तोते अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। तोता बता रहा है, पिछले जन्म में मैं बड़ा विद्वान था, लेकिन मुझे अभिमान था अपने विद्वत्ता का। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरता। उसके बाद इस लोक में आया, सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं गर्मी में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था, वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहां से चुरा लिया, उस आश्रम से मुझे चुरा लिया बहेली ने, चोरी करने वाले। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। बहेली ने पैसा पाने के लिए मुझे चुरा लिया पिंजरे के सहित, और इस देवी ने खरीद लिया मुझे, है ना। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस विषय का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है, और उसी के पुण्य से ये सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। कितना आश्चर्य प्रथम अध्याय का पाठ करने से, है? मैंने अपने पाप को दूर किया, तोता बोल रहा है, और वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है, उसी के पुण्य से सुशर्मा भी बैल की योनि से मुक्त होकर के सदाचारी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। ये तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। तीनों कौन, तोता वेश्या और सुशर्मा, तीनों। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरिओ गीता का महात्म्य है। लेकिन अब गीता का वो जो महात्म्य है वो नहीं मिलता। अगर जो है कोई गीता का पाठ करता है तो गीता का जो जो परिणाम जो मिला सुशर्मा को दिया इनको मिला है वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोग जो है इतने पतित हो गए हैं कि कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो वेश्या है वो पवित्र हो गई। क्यों पवित्र हो गई? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है, आदर पूर्वक सुनती थी कि जो कुछ भी इस कुछ भी है वो तोता कुछ भी पढ़ रहा है, उसके अंदर क्या श्रद्धा है कि ये बहुत पवित्र कुछ है पाठ कर रहा है। तो ये श्रद्धा की आवश्यकता है ना। लेकिन गीता की ऐसी ऐसी व्याख्या हो रही हैं, जो विद्वान लोग गीता की व्याख्या कर रहे हैं वैसी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण को हटा देते हैं, कृष्ण का कुछ गुण नहीं उसमें मिलता है। और क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही जो है भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे भाव से जो है कोई गीता का पाठ करे तो ये फल नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवत गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है। अगर गीता पाठ का कुछ फल पाना है तो भगवत गीता यथारूप पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें ये हर बार निश्चित किया गया है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो है भगवद्गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने दी है, इसको बांटना, इसको देना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि देखो वो वेश्या शुद्ध हो गई गीता के पाठ से, लेकिन जो आजकल की टीकाएं लिखती मिलती हैं गीता की, मायावादी टीकाएं मिलती हैं, उन टीकाओं को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति गीता के पाठ से शुद्ध नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अपराध होता है कि कृष्ण को ना मान करके कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, या ये मानना कि कृष्ण स्वामी हम दास हैं, एक दिन ऐसा भी होता है कि हम भी स्वामी बन जाएंगे, तो इससे भी गीता के पाठ से लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवद्गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है, है ना। तो भगवद्गीता यथारूप अगर आप लोगों को देते हैं तो वे जो है हर पेश में कृपा जो है ये समझाते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही भगवान है। एक ब्राह्मण था, वो गीता का पाठ करता था तो वो गीता के अर्थ को नहीं जानता था, अशुद्ध पाठ करता था, लेकिन तो भी कृष्ण का उसको आलिंगन प्राप्त हो गया। क्यों? केवल ये सोच करके कि कृष्ण जो है परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी दया है। इतना इतने से भी जो है गीता का पाठ करने से कोई व्यक्ति फल प्राप्त कर सकता है। ये जो मायावादी सिद्धांत है, मायावादी भाष सुनने ले भय सर्वनाश, मायावादी भाष सुन करके सब नाश हो जाएगा, है ना। फिर गीता पाठ करने से भी कुछ फल नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए भगवत गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है ना। तो आप अपने लिए तो लेना ही है, अपने लिए तो पढ़ना ही है, और भी लोगों से लोगों को के लिए आप लीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं। अपना भला, दूसरों का भला, सबका भला, है ना। यंत्रास्त्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरगाई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय। हो आप।